magical Sophie character. If the size were there. Jesse, up maybe. Up get to near me.
किसी देश का राजा अपने बेटे से बहुत नाराज हो गया और वो इतना नाराज हुआ कि उसने उस बेटे को राज्य से ही निकाल दिया, राज्य से निर्वासित कर दिया और वो बेटा चला गया। कई साल गुजर गए, 10-15 साल गुजर गए और राजा को चिंता हुई कि अब राज्य अधिकार का भार कौन संभालेगा, किसे दिया जाए। वो इकलौता बेटा था तो उसने मंत्री को भेजा कि जाओ उसे ढूंढो और ले आओ, जहां कहीं हो, कैसा भी है, आखिर तो मेरा ही बेटा है। तो मंत्री उसे ढूंढने निकले और कई राज्यों की यात्रा की, वो नहीं मिला। और कई मास बीत गए और एक दिन अचानक उस मंत्री को वो बेटा दिखा और वो फटेहाल में था और भीख मांग रहा था, भिखारी की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था। परंतु मंत्री ने उसे पहचान लिया कि यही राजा का बेटा है, और मंत्री उसके पास गया और उस बेटे ने भी मंत्री को पहचान लिया और मंत्री ने कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें याद किया है, चलो वापस। तो वो जो बेटा था, जो कि फटे पुराने वस्त्र में था और उसके हाथ में एक भीख मांगने का पात्र कटोरा था, जैसे ही मंत्री ने उसे कहा कि आप चलो साथ में, उस बेटे ने वो कटोरा एकदम से फेंक दिया और कहा मेरे शाही वस्त्र कहाँ हैं, और तुरंत शाही वस्त्र पहन लिए और तुरंत आदेश देने लगा सभी सिपाहियों को और रथ में बैठ गया और किसी राजकुमार की तरह चलने लगा और वापस राज्य में आया, ऐसे कि जैसे कभी भिखारी था ही नहीं, ऐसे कि जैसे हमेशा से ही राजकुमार रहा हुआ है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जैसे ही उसे याद आया कि मैं भिखारी नहीं हूं, मेरा पिता राजा है और मैं स्वयं राजकुमार हूं और यह सारा राज्य मेरा है और मैं इतने बड़े साम्राज्य का मालिक हूं और यह मेरा राज्य अधिकार है, जैसे ही उसे स्मृति आई, अब तक विस्मृत हो चुका था, अब तक भूल चुका था कि मेरा भी कोई पिता है और मेरा भी कोई राज्य है और मुझे ऐसा राज्य कभी करना है, अब तक तो भिखारी मांगते भीख मांगते हुए यहां वहां भटक रहा था। पर जैसे ही याद आया और जैसे ही मंत्री ने कहा, उस मंत्री को ही आदेश देने लगा वो, जैसे ही चेतना जाग जाती है, जैसे ही उसे पता चल जाता है कि तुम ये नहीं तत्वमसी, thou art that, तुम वो हो, हम सो सो हम, ब्राह्मण सो देवता, सुबह की साकार मुरली तुम ऑलराउंड पार्ट बजाते हो, ऑलराउंड चक्र तुम लगाते हो। तो जैसे ही आत्मा को स्मृति आती है कि मैं कौन हूं, तुरंत पावर आ जाती है, तुरंत शक्ति आ जाती है। जो निर्बलता है उसका कारण है आत्मा से दूर है हम। पहले शरीर मरता था और आत्मा भटकती थी, और अभी आत्मा मर चुकी है और हम भटक रहे हैं। इस केंद्र पर फिर आ जाना, यही अभ्यास है और यही जीवन है और यही जीवन का राज है। सारे दुखों का कारण ये परिधि है। जब तक चेतना परिधि पर घूम रही है दुखी है, जब तक इस केंद्र में वापस नहीं आते तब तक दुखों से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं। दुख यहां है, यहां कोई दुख नहीं है। हम कहां हैं, यहां या यहां? यहां जब जब हम हैं और जब जब यहां केंद्रित होकर जो कुछ हमने किया उस सब ने हमको सुखी किया, और जब जब हम यहां थे और यहां बैठकर हमने जो कुछ किया उस सब ने हमको दुखी किया, चाहे वो सेवा ही क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी सेवा हो। पर उस सेवा को जब हम कर रहे थे तब परिधि पर बैठे थे, केंद्र पर नहीं, इसलिए दुखी हुए, इसलिए असफल हुए। पुरुषार्थ भी जो कर रहे थे, शायद वो पुरुषार्थ इस तल पर चल रहा है जिसमें केवल और केवल मुरली और ज्ञान चिंतन है केवल, पर केवल ज्ञान चिंतन से कुछ नहीं होगा। चिंतन बहुत अच्छी बात है, पर चिंतन फिर भी विचारों के ही तल पर हो रहा है। जब तक विचार भी ना छोड़ दे और चेतना स्थिर हो जाए जो मैं हूं उसमें, तब तक निरंतर आनंद की अवस्था नहीं हो सकती। कभी कभी चिंतन भी बाधा है आत्माभिमानी बनने। बड़ा क्रांतिकारी वाक्य है, क्योंकि हमेशा हम चिंतन की ही महिमा करते, परंतु वो चिंतन भी एडिक्टिव है, क्योंकि चिंतन करने वाला सोचता है मैं चिंतन ही करता रहूं। आत्माभिमानी कब बनेंगे? क्योंकि आत्माभिमानी अर्थात चिंतन को भी पीछे छोड़ देना। चिंतन में जो रस है और चिंतन से जो उपलब्धि है और चिंतन में जो प्रसिद्धि है वो आत्माभिमानी में कम है। चिंतन तो चाहिए, पर एक समय आ जाए कि चिंतन भी छूट जाए। जैसे बीज होता है, बीज जब झाड़ बनता है तो बीज रहता है क्या? बीज खत्म हो जाता है। बीज झाड़ बनने के बाद बीज नहीं रहता है, वो मुरलियों में अलग बात है। मैं चैतन्य बीज हूं, वो बीज भी रहता है और झाड़ भी रहता है। वो केवल उसके लिए है जो इस झाड़ का चैतन्य बीज है। बाकी संसार में बीज और झाड़ एक साथ कभी नहीं रहते। जब बीज झाड़ बनता है तब बीज समाप्त हो जाता है। चिंतन माध्यम है जो पहुंचाएगा कहां तक? यहां तक। यहां पहुंचने के बाद चिंतन भी छूट जाए, नहीं तो वो चिंतन भी चोर है। एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था, तीन डाकुओं ने उसको पकड़ा। पहले ने उसको बहुत मारा, दूसरे ने उसको बांध दिया, तीसरे को दया आ गई। तीसरे ने कहा तुम भले मानुस दिखते हो, उसको छोड़ा और उसको कहा यहां से चले जाओ, वो उधर वो रास्ता है, पर उधर मैं भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं भी चोर हूं, पुलिस मुझे पकड़ लेंगे अगर मैं गांव में प्रवेश किया तो, इसलिए तुम चले जाओ। पहला सब रजोगुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तीनों ही चोर है। रजोगुण भी चोर है क्योंकि रजोगुण सत्कर्म में बांधता है, अच्छे कर्मों में बांधता है, पुण्य में बांधता है, सेवाओं में बांधता है, चिंतन में बांधता है, पर वो चिंतन वहां तक नहीं ले जा सकता। क्या चिंतन जाता है परमधाम में? चिंतन को नीचे छूटना पड़ेगा, वहां पर चिंतन भी नहीं है, वहां पर मौन है, वहां चिंतन से परे का साम्राज्य चालू होता है। इसके लिए यात्रा कहां से है? परिधि से, केंद्र की, ऑर्बिट से सेंटर की, पेरिफेरी से सेंटर की यात्रा है। मैं इस यात्रा में कहां तक हूं और सारे दिन भर ये यात्रा करना है। और इस यात्रा के लिए बाबा ने कौन सा उपाय बताया? ड्रिल। कौन सा ड्रिल? कौन सी ड्रिल बताई? पांच स्वरूपों की ड्रिल, जो हम सब जानते हैं पर करते बहुत कम है। मुरली है 30 मार्च 2000 की, बाबा ड्रिल करा रहे, भगवान खुद ही आके ड्रिल करा रहा है। कौन सी ड्रिल करा रहा है? कौन सी ड्रिल करा रहा है? सामने भगवान बैठा है और कहता है तुम मुझे वहां याद करो। कौन सी ड्रिल करा रहा है? कि यहां मैं हूं पर चलो कहां? ऊपर। अर्थात ड्रिल का उसके कहां रहने से और न रहने से कोई संबंध नहीं है। घर का मालिक भरे घर में नहीं है, पर घर में तो जाना है क्योंकि घर का मालिक ही कहता है मुझे वहां याद करो जहां मैं हूं। बाप दादा सभी बच्चों के पांच स्वरूप देख रहे हैं। पहला स्वरूप अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, याद है ना अपना स्वरूप? भूल तो नहीं जाते? तो हमारे पांच स्वरूप है और सारे दिन भर आज इन स्वरूपों का अभ्यास करने। बाबा ने इस मुरली में कहा एक घंटे में एक बार करो। एक घंटे में कितनी बार करो? एक बार करो। और कितना देर? 5 सेकेंड। पर उस 5 सेकेंड के लिए बहुत बड़ी तैयारी चाहिए, पहले अंडरस्टैंडिंग चाहिए करना क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परमधाम। परमधाम में 7 अभ्यास, फिर दूसरा सतयुग में 7 अभ्यास, तीसरा द्वापर में 7 अभ्यास, संगम युग पर 7 अभ्यास और फरिश्ते के 7 अभ्यास। कुछ इधर उधर हो गया तो भी चलेगा। जैसे मेडिकल फील्ड में कोई भी कैलकुलेशन जब करना होता है तो राउंड फिगर की जरूरत होती है। जैसे बॉडी का जो पीएच है, पीएच 7.35 टू 7.45, पर इस पीएच के साथ कैलकुलेशन नहीं हो सकते, इसके लिए हम लोग लेते हैं राउंड फिगर 7.45। जैसे ब्लड प्रेशर का एक रेंज है, इतना होना चाहिए, पर राउंड फिगर लिया जाता है 120/80। हमेशा राउंड फिगर की आवश्यकता होती है। उसी तरह यदि हमको कहे परम धाम में कुछ करो, अरे परम धाम में तो इतना सब कुछ करने का है और कुछ भी नहीं होता है फिर। इसके लिए कुछ फिक्स्ड, कुछ ठोस अभ्यास चाहिए कि उतना ही करना है। हां, उतना होने के बाद एडिशन कर सकते हैं। इसके लिए परम धाम पहुंचते ही अपने सात स्वरूपों को याद करना है। परम धाम में हमारे सात स्वरूप है। सबसे पहला स्वरूप है निज स्वरूप। निज स्वरूप में सात बातें हैं। पहला निज, उसमें सात ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ये निज स्वरूप है। तो परम धाम में जाना अमृत वेला और अपने ही निज स्वरूप में स्थित होना कि मैं ये हूं। और पहले पहले टाइम लगेगा, पहला ही 5 सेकंड में नहीं होता है। जब साइकिल सीखी जाती है तो टाइम लगता है, एक बार एक्सपर्ट बन गए फिर तेज। सर्जरी जब सीखते हैं तो हाथ थर-थर कांपते हैं, एक बार हो गई, प्रैक्टिस हो गई तो गीत सुनते सुनते ऑपरेशन करते हैं। प्रैक्टिस, कौन कितनी किसने प्रैक्टिस की है। पहली बार करते हैं तो हर चीज मुश्किल होती है, और प्रैक्टिस करते करते गायक जब संगीत सीखता है तो कितनी मुश्किल होती है, कोई गिटार सीखता है तो कितनी मुश्किल होती है, पर बाद में वही गिटार सीखना कितना सहज हो जाता है उसके लिए। तो सबसे पहला तो है सात स्वरूप में निज स्वरूप, निज स्वरूप में अपने सातों स्वरूप। दूसरा, मैं निराकार आत्मा हूं। पहला तो निज स्वरूप को याद करना, दूसरा संकल्प मैं निराकार हूं, और यह निराकारी दुनिया है, यह निराकारी वतन है। यहां शरीर नहीं है, यहां कोई आकार नहीं है, यहां कोई रूप रंग नहीं है, मैं निराकार हूं। इसको संकल्प करना है केवल। संकल्प करते ही आत्मा स्थित हो जाती है। जो कुछ इमेजिन किया जाता है, विजुअलाइज किया जाता है, उसमें हम स्थित हो जाते हैं। जैसे हम देखें कि एक फूल खिल रहा है, मन में विजुअलाइज करें तो वो फूल खिला हुआ दिखता है। क्रोध में व्यक्ति है थोड़ा सा शांत हो जाएगा, या फिर आंखें बंद करके कोई ये देखे कि छोटा सा निराकस बच्चा हंस रहा है, उसको देखते ही स्वरूप प्रकट होता है। तो याद का संबंध स्वरूप से है, स्मृति का संबंध स्वरूप से, स्मृति स्वरूप। बेटे की याद आ गई, यहां बैठे बैठे आंखों से आंसू, बेटा तो है ही नहीं, केवल याद किया। तो स्मृति, याद, तुरंत स्वरूप, प्रैक्टिकल तुरंत स्वरूप। जैसे ही विजुअलाइज किया गया, विजुअलाइज पवित्रता या अपवित्रता, दोनों दोनों, पवित्रता का चिंतन तुरंत स्वरूप, अपवित्रता का चिंतन तुरंत शरीर सहित स्वरूप। जो कुछ विकार शरीर के साथ करता है, विकार में जाने से, वो कल्पना में भी किया जाता है तब भी वही शरीर पर प्रभाव होता है। तो मैं कैसा हूं? निराकार। उसके बाद मैं निराधार आत्मा हूं। कोई आधार नहीं है यहां परमधाम में, मैं निराधार हूं। अगला, निर्लेप, कोई लेपछेप नहीं। बाबा कहते हैं आत्मा को लेपछेप लगता है, पर परमधाम में नहीं। मैं निर्लेप हूं, आत्मा निर्लेप नहीं है, परंतु मैं निर्लेप हूं, यह आत्मा का समान है। तो मैं कैसी हूं? निर्लेप। उसके बाद मैं निर्बंधन आत्मा हूं, कोई बंधन नहीं। क्यों? क्योंकि यह मुक्ति धाम है। क्यों? क्योंकि यह मोक्ष धाम है। क्यों? क्योंकि ये लैंड ऑफ लिबरेशन है, यहां मुझे कोई भी बंधन नहीं। ये विधि है, यदि संसार में बहुत बंधन है तो अधिक से अधिक अभ्यास करना मैं परम धाम में बिना किसी बंधन के हूं। उसके बाद में मैं निर्वाण हूं, वाणी से परे, कोई आवाज नहीं मुझ तक छूती। क्यों? क्योंकि ये निर्वाण धाम है, क्योंकि ये वानप्रस्थ है, क्योंकि ये विज्ञान है। वो ज्ञान है नीचे, ये वानप्रस्थ है, ये विज्ञान है। मैं विज्ञान में हूं, मैं वानप्रस्थ में हूं, मैं आवाज से परे की दुनिया में हूं, मैं निर्वाण में हूं, साइलेंस वर्ल्ड में हूं, साइलेंस होम में हूं। ये सारे शब्द लाने हैं तो वहां स्थित हो जाना है। उसके बाद में मैं पांच तत्वों के आकर्षण से परे हूं, मैं अर्थात मैं ब्रह्मलोक में हूं। ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्मदेश, ब्रह्मांड, अलग अलग शब्द लाने हैं। मैं इस लोक में हूं जहां पर ब्रह्म है, तत्व नहीं है, और तत्व ही नहीं है तो शरीर का आकर्षण ही नहीं है, क्योंकि सारी माया किससे है? शरीर से। आज की मुरली में कहा छींची है ये दुनिया, गंदी छींची झूठखंड। तो परम धाम में जाते ही मैं निराकार हूं, मैं निज स्वरूप में स्थित हूं, मैं निर्बंधन हूं, मैं निर्लेप हूं, मैं निराधार हूं, मैं निर्वाण हूं, मैं पांच तत्वों के आकर्षण से परे हूं। सात हो गए, एक एडिशन कर दो। वो है नहीं, मैं निरसंकल्प हूं। वास्तव में ये सारी स्थिति हमको निरसंकल्प अवस्था तक ले जाएगी। निरसंकल्प हूं ये बोलना भी तो संकल्प है, इसके लिए इसको उसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये तो ये स्वमान को ही भंग किया जा रहा है। मैं निरसंकल्प हूं कहने में ही कॉन्ट्रोवर्सी है। कहते ही भाव ही नष्ट हो रहा है। ये मैं निरसंकल्प हूं ये बोला भी तो नहीं जा सकता स्वमान। ये ऐसा अद्भुत स्वमान है कि इसे बोलने का भी कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बोलते ही वो नष्ट हो जाता है। निर्विकल्प कहा जा सकता है, पर निर्विकल्प शब्द परम धाम में यूज करना वो निगेटिव है। वो वहां पर कोई भी निगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करना है किसी भी तरह का। फिर मैं व्यर्थ से मुक्त हूं ये भी किया जा सकता है, मैं शरीर नहीं हूं ये भी अभ्यास किया जा सकता है, पर ये अभ्यास इतने शोभनीक नहीं है, परम धाम के शोभा के थोड़ा नीचे है। तो पहला मैं कौन हूं परम, ये है सबसे पहला। पहला अनादि ज्योति स्वरूप, याद है ना अपना स्वरूप, भूल तो नहीं जाते हो। दूसरा है अनादि देवता स्वरूप, पहुंच गए देवता स्वरूप में। तो दूसरा है देवता, देवताओं के साथ गुण है। सबसे पहला ये तो सब जानते हैं, 16 कला संपूर्ण, सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तीसरा मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। छठवा सतोप्रधान, और सातवा आत्माभिमानी। आत्मा सुखी तभी रह सकती है केवल दो स्थितियों में, जब वो अपने स्वरूप में स्थित है या भगवान के प्यार में खोई है। आज की मुरली में शुरुआत ही ये है, रूहानी प्यार। तुम्हारा बाप से इतना रूहानी प्यार है, तो केवल जब आत्मा परमात्मा प्रेम में डूबी रहती है, उस दिन संडे को भी कहा था क्लास में, तभी वह सुखी रह सकती है। पर सतयुग में परमात्मा नहीं है फिर भी आत्मा सुखी है, क्यों? क्योंकि वह स्वस्वरूप में स्थित है। और संगम पर वह आत्माभिमानी भी है और परमात्मा अभिमानी भी है, दोनों है, इसलिए सुखी है। और बीच में दुखी क्यों है? क्योंकि या ना आत्मा है ना परमात्मा है, आत्मा रहित परमात्मा रहित अवस्था है, इसलिए दुख है यहां पर। सतयुग में परमात्मा रहित है परंतु आत्मा है, ये दो ही स्थिति है सुख प्राप्त करने की, आत्माभिमानी परमात्मा अभिमानी। तो ये सात किसके स्वरूप हुए? देवता के। तो जब भी याद करो देवता को, मैं देवता हूं, आज की मुरली में भी है, देवता ऐसे थे, देवता वैसे थे, वहां ये था, वहां वो था, बहुत सारी बातें, वो स्वर्ग था, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, ये तो नर्क के वंडर है, वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वो पैराडाइज है। दादी गुलजार का एक क्लास है जिसको हर एक को आज सुनना है, सतयुग का दिव्य दर्शन, जिसमें दादी गुलजार ने सब कुछ बताया वहां क्या होगा, पुष्पक विमान कैसे होंगे, विमान जो होंगे वो दो डिजाइन के होंगे, पुष्प वाले होंगे और पंछी वाले होंगे, पहाड़ भी वैसे होंगे। तो उस चिंतन में जाना है, स्वयं को सतयुग के चिंतन में ले जाना है। दादी ने बहुत अच्छी बात उसमें कही, बड़ी सूक्ष्म बात, अभी के जो जन्म है, हमारा जन्म ही बीज जो है जन्म का विकार है, और सतयुग में जो बीज ही है जन्म का वो निर्विकार है, इसलिए वहां प्यूरिटी बहुत सहज है। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाके बैठ जाओ, देखो ये मैं बन रहा हूं, ये पवित्रता मुझ में है, याद करना है। तो अपने सात स्वरूपों को याद करना है सतयुग के, कौन कौन से, मैं सोलह कला संपूर्ण, मैं संपूर्ण निर्विकारी, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, हाँ वो एक रह गया था, मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं संपूर्ण अहिंसक, मैं सतोप्रधान, मैं आत्माभिमानी और संपूर्ण निर्विकार, ये साथ। इसमें बहुत सारी एडिशंस भी की जा सकती है, पर वो एडिशंस जो है, जैसे मैं डबल लाइट हूं, तो डबल लाइट तो बाबा ने डबल क्राउन, वो तो सतयुग संगम के लिए भी कहा हुआ है, पर इसलिए उसको उसमें नहीं डाला। तो सतयुग की ये बात है, और सतयुग का सारा देखना है, पहाड़ देखना है, पढ़ाई देखनी है। पढ़ाई में क्या होगा, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, केवल ज्योग्राफी, नो हिस्ट्री, हिस्ट्री हुई नहीं है, कहां से होगी, केवल ज्योग्राफी कि वहां कहां जाना है अभी नेक्स्ट टाइम पिकनिक के लिए, वहां कौन से स्थान है, वहां क्या है, और दो ही पढ़ाई होगी, पढ़ाई में भी केवल दो चीज, एक आर्ट और एक पेंटिंग और सिंगिंग, तो ये दो मुरली डेट नहीं क्लास है, वो मुरली डेट तो है दो, वो तो दूसरी बात है। तो जिनको पेंटिंग नहीं आता है, अभी से पेंटिंग के संस्कार भी धारण करने हैं, ये हमने उस क्लास से सुना। तो पेंटिंग और दूसरा गायन, ये तो दो सीखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे आएंगे उधर, कोई क्लासेस है तो ज्वाइन करना पड़ेगा। ये दो कला है, तो ये हो गया सत्य। फिर आ जाओ तीसरा, तीसरा है, तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, वह भी याद है, आप सबका, आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है, आपकी पूजा होती है कुमार, सुनाओ आपकी पूजा होती है, तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। तो पूज्य स्वरूप में सबसे पहला मैं शक्ति संपन्न हूं, जिनकी भी पूजाएं होती है वो सब कैसे है, शक्तिशाली है, दुर्गा काली सरस्वती सब कैसी है, शक्ति संपन्न है, हनुमान गणेश, मैं शक्ति संपन्न हूं। दूसरा मैं संहारी मूर्त हूं, असुरों का संहार करने वाली, महिषासुर मर्दिनी महाकाली साक्षात मृत्यु, मृत्यु का तांडव नृत्य करने वाली महाप्रलयंकारी महाकाली। तो दूसरा है मैं संहारी मूर्त हूं, तीसरा मैं वरदानी मूर्त हूं, सारे सारी मूर्तियां क्या करती है, वरदान देती है। आज की मुरली में भी है, वो लोग क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, विनाश करते हैं, ये है अंधश्रद्धा, गुड़ियों की पूजा, गुड़ियों का खेल, ये भक्ति मार्ग वालों के लिए। तो यहां पर मैं कैसी हूं, वरदान देने वाली हूं, उसके बाद में मैं साक्षात्कार मूर्त हूं, भक्तों को साक्षात्कार कराने वाली, कराने वाला या वाली जो भी। उसके बाद अगला मैं भक्त वत्सल हूं, भक्त वत्सल, भक्तों से बहुत प्रेम है। आज की मुरली में है, आज की या कल की, वो क्या करते हैं काशी कलवट कहा लेते, आज ही है शायद, आज है, आज है। तो मैं कैसी हूं, भक्त वत्सल, भक्तों पर दया करने वाली। उसके बाद उसी से साथ जोड़ दो, मैं रहम दिल, रहम दिल हूं, और लास्ट दिव्यता से संपन्न हूं। पहले तो लिख के रखना, और जैसे कहा है ना, इसमें बहुत कुछ आ सकता है, पर अगर हम फिक्स्ड चीजें ले ले तो अभ्यास करने के लिए काम आते हैं। अगर बहुत सारा ले ले, हमको तो बहुत सारा पता है, तो एक कुछ भी नहीं। मराठी में कहते एक ना धर धर बराबर चिंत्या, तो एक भी ढंग से नहीं करते। पता सब है पर करते एक भी नहीं। तो ये हो गया देवता स्वरूप। उसके बाद में ब्राह्मण संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप, चौथा है संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप। इसमें तो बहुत ही लंबा हो सकता है, पर इसको थोड़ा हम शॉर्ट में कर देंगे। साथ में सब कुछ आ जाना चाहिए, मैं आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमानी हूं, उसमें दो चीजें तो इंक्लूड हो गई। बाप का प्यार, जो आज के मुरले में कहा ये रूहानी प्यार है, ये तुम्हारा बाप से यहां रूहानी प्यार होना चाहिए, आंखों से आंसू आने चाहिए तुम्हारे इस प्यार में। माशुक माशुक आया है, इस प्यार में आंसू आ जाए। तुम भक्तिया हो, बाबो भय भगवान वो है पति। तो आत्माभिमानी परमात्मा। दूसरा नेचुरल स्वरूप मेरा है संपूर्ण पवित्रता, ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण पवित्र। तीसरा ब्राह्मण अर्थात जहां पर निरंतर सेवाधारी, ये अपने आप में एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है, याद करना है अपने आप को, याद दिलाना है निरंतर सेवाधारी। अभी जो मुरली चली संडे, चार प्रश्न थे उसमें सेवा के लिए, कौन कौन से? तन मन धन मनसा वाचा कर्मना, खाता कितना बड़ा है। दूसरा तन मन धन मनसा वाचा कर्मना, जितना करना चाहिए था उतना किया, स्थिति अच्छी तो किए, स्थिति अच्छी नहीं कारण अकारण नहीं किया, ऐसा तो नहीं। तीसरा ट्रेजर अपने खजानों को कितना लगाया। और चौथा, चौथा में तीन, ड्यूटी या सेवा, मूड के अनुसार, या फिर बहती गंगा या ठहरता हुआ तालाब। ये प्रश्न अपने आप से पूछो, याद है ना कि गया? अभी याद है, गया, भूलना नहीं है। ये भूलना ही तो बड़ा, भूलने से ही तो सारे पाप होते हैं, उसी से तो हुआ सारा, सारी गड़बड़। जब तक पहली मास्टरी ना हो, अगली को हाथ ही नहीं लगाना। वो गणेश जी को क्या कहा था व्यास जी ने, आज व्यास को भी याद किया है सागर मुरली में, कि जब तक तुमको समझ में नहीं आया ना, तब तक आगे नहीं बढ़ना।
पर बाबा यहां आगे बढ़ जाता ना भाई। संगम को छोटा लगता है तो बड़ा पुस्तक लगता
है। कहां थे? निरंतर सेवा था। चौथा धारणा स्वरूप आत्मा हो, उसमें दो चीजें ऐड कर दो, त्यागी और तपस्वी। धारणा स्वरूप आत्मा हो। उसके बाद में एवर रेडी। उसके बाद में अगला ब्राह्मणों का स्वरूप जिसमें सब आ जाए, विश्व कल्याण कर लिया जा सकता। इसमें तो इतने हैं, इसमें से कितने निकाले, सोमान ही सोमान, एक ही मुरली में 10 सोमान है रोज की मुरली में, कितने ले। पर फिर भी जो ब्रॉड है, इसमें ये ले सकते उद्धार मूर्त आधार मूर्त हूं मैं, आधार मूर्त उद्धार मूर्त पूर्वज विश्व कल्याणकारी, ये सब लिया जा सकता। और एक बताओ, मास्टर सर्वशक्तिवान, ये तो सबसे मेन है, मुझमें सारी शक्ति है। मास्टर अर्थात अरविंद भाई परसों का स्लोगन, स्लोगन जिस समय जिस शक्ति का आवश्यकता हो आह्वान करो वो आ जाए, ये है मास्टर। तो ये मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। उसके बाद में लास्ट है फरिश्ता। तो उसके बाद में लास्ट है फरिश्ता स्वरूप। ये पांच ही स्वरूप याद है ना? अच्छा, एक सेकंड में ये पांच स्वरूप में अपने आप को अनुभव कर सकते, 1 2 3 4 तो कर सकते हो। ये पांच ही स्वरूप कितने प्यारे, जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, सोचो और अनुभव करो। ये रूहानी मन की एक्सरसाइज। आजकल सभी क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना, जैसे आदि में आपकी दुनिया में मतलब सतयुग में नेचुरल चलते फिरने की एक्सरसाइज थी, खड़े होकर 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते, जैसे स्थूल एक्सरसाइज से मन भी दुरुस्त रहता है, तो चलते फिरते ये मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं लगाओ, 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो। ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सकता है? कोई तो हाथ उठाओ, 5 सेकंड भी जिसके पास नहीं है। फिर या तो नहीं कहेंगे अरे क्या करे टाइम नहीं मिलता, यह तो नहीं कहेंगे ना टाइम मिलता है तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो, किसी भी कार्य में हो 5 सेकंड भी यह मन की एक्सरसाइज करो तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा भी कहते हैं हर घंटे में यह 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो, तो आज ये बड़ा काम करना है, हर घंटे में एक बार पांचों स्वरूप में स्थित हो जाना, हर घंटे में एक बार, और फिर उसको बढ़ाते जाना है। और जिसको इससे भी आगे जाना है तो इसमें तो रेस करनी है ना, बाकी लोग 1 घंटे में एक बार कर रहे हैं तो मैं 1 घंटे में 2 बार करूंगा। हो सकता है, देखो सभी कह रहे हो सकता है, याद रखना ओम शांति भवन, रखना याद रखना, यहां मुरली चल रही है और अभी ये नीचे चल रही है ओम शांति भवन की, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करें मन नहीं टिकता, मन को मन बना देते हो, मन 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 वजन करते हैं ना, पहले जमाने में पाव शेर और मन, आजकल बदल गया है, तो मन को मन बना देते हो बोझ वाला, और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। तो 5वां स्वरूप है फरिश्ता, तो फरिश्ता की 7 बातें, सब फरिश्ता की ढेर सारी बातें हैं, पर जैसे कहा अभ्यास के लिए कुछ ठोस चीजें चाहिए, उतनी ही चीजें चाहिए, उसको याद करके रखना, उसको करना, वो पूरा हो गया तो फिर बाकी एडिशन कर दे जाओ। सबसे पहला फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, ये सिंपल सिंपल ले रहे हैं एकदम, फरिश्ता अर्थात मैं डबल लाइट हूं। दूसरा फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला, उड़ने वाला अर्थात नीचे जमीन पे पाव रखने वाला नहीं, फर्श नहीं, अर्श अर्श पे रहने वाला, ये दूसरा। तीसरा फरिश्ता अर्थात अंतवाहक शरीरधारी, अंतवाहक शरीर को दूसरा शब्द है लाइट का कार या चमकीली ड्रेस वाला। अगला मैं फरिश्ता अर्थात जिसके सारे रिश्ते एक बाप से है, और किसी से कोई रिश्ता नहीं, और किसी की याद नहीं। आज की मुरली में भी कहा एक बाप को याद करो बस, और किसी को भी याद नहीं करो, रास्ता भी एक ही है। आज की मुरली में बड़ा एक अच्छा वाला लाइन आई है, तुम्हारा बाप से लव है, तुम दूसरों से लव करना पसंद नहीं करते हो, यू डोंट, तुमको पसंद ही नहीं है किसी से प्यार करना, किसी से, तुमको किसी से लव करना पसंद नहीं है,
वो हम नहीं करते दूसरे करते
तो मैं कैसा हूं, सारे रिश्ते फरिश्ते अर्थात सारे रिश्ते एक बाप से। उसके बाद में अगला फरिश्ता अर्थात परमात्मा संदेशवाहक, मेरा काम क्या है, संदेश पहुंचाना, संदेश देना, एक एक को जा जा के संदेश देना, सूक्ष्म वतन में पूरे धरती पर घूमते रहना है, धरती पर ढूंढते रहना है किसको संदेश दूं। फरिश्ते क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। उसके बाद में फरिश्ता अर्थात उपराम और साक्षी, फरिश्ता अर्थात मैं उपराम हूं और साक्षी हूं, सारा खेल देख रहा हूं, अनअफेक्टेड, यहां कुछ भी हो रहा है मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मुझ पर, मैं उपराम हूं, मैं साक्षी हूं। 7 हो गए, 6 हो गए, और एक फरिश्ता अर्थात सकाश हो गया, परमात्मा संदेशवाहक, फरिश्ता अर्थात न्यारा प्यारा हो गया, साक्षी उपराम, फरिश्ता अर्थात, फरिश्ता अर्थात दाता हो गया, फरिश्ता उड़ने उड़ना हो गया, फरिश्ता अर्थात कोई नया बताओ पॉइंट, वो हो गया परमात्मा संदेशवाहक, परमात्मा को संदेश देना और आत्मा को भगवान से मिलाना, उसमें हो गया सारा ब्रॉड कैटेगरी हो, फरिश्ता अर्थात रिश्ता बोल दिया, फरिश्ता अर्थात उड़ना बोल दिया ना, दुख दूर, वो संदेश देते थे दुख तो दूर करेगा ना फरिश्ता अर्थात वो बो गया उड़ना अर्थात 5 तत्वों से ऊपर तो उड़ा ना, हल्का अर्थात पहला ही डबल लाइट है, हील करने वाला वो जो संदेश दे रहा है हील करेगा, वो सब करेगा, फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस, फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस, क्या करने वाला, आना जाना, हाँ वो भी किया जा सकता है आना और जाना, तो फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस। तो ये 5 अभ्यास है, और एक एक अभ्यास एक एक स्वरूप में 7-7 बातें, पहले तो लंबा लंबा समय बैठकर आराम से करना है, विधिवत एक एक घंटा लगाना है उसको करते करते, और फिर जब बहुत बार होगा तो फिर फास्ट परम धाम में गए, वहां से नीचे। अब यहां पर, और यह अभ्यास दिन भर में बाबा ने कहा करो, मन नहीं तो बन जाएगा भारी, शाम होते होते इतना भारी हो जाता है फिर शाम का योग भी नहीं लगता है। तो शक्तिशाली बनने के लिए ड्रिल चाहिए, अगर शरीर को एक्सरसाइज नहीं करे तो फ्लैबी हो, डल हो जाती है मसल्स, वैसे मन भी जो है ना उसको ड्रिल चाहिए। और पहले पहले किसी को अच्छा लगता है एक्सरसाइज करने? कोई लड़का है स्कूल का, सोता है वो, अच्छा लगता है कि उसको मम्मी कहती है उठो उठो, वो कहता है नहीं अभी 5 मिनट और, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है एक्सरसाइज वगैरह, उसके फिलोसॉफी के खिलाफ है वो। तो एक्सरसाइज के लिए पहले पहले मेहनत करनी पड़ती है, फिर धीरे धीरे वो सहज हो जाएगा, और एक बार सहज हो गया फिर अपने आप हो गया होगा, फिर करो भी नहीं तो भी होगा, जैसे साइकिल को पैडल लगाए फिर पैडल लगाना बंद कर दो, अपने आप मोमेंटम से आगे बढ़ेगी, कुछ आगे बीच में कुछ दिन करो भी नहीं तो अपने आप ये जो करते रहे इतना दिन वो अपने आप मोमेंटम आगे लेके जाएगा। वो भी अच्छी है, करने के लिए भी बेचैनी हो पर नहीं भी कही किसी कारण से, क्योंकि लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें तो है, कांटे लेके कोई ना कोई तो खड़ा है, कांटों का जंगल है, निकलते ही कांटा चुबाना चालू करता है। तो कभी कभी कोई कांटा चुबा दे और हम भूल ही जाए करना, पर जो कर रहे थे उसका मोमेंटम आगे ले जाएगा, वो हमको आगे बढ़ाएगा। इसके लिए ये एकमात्र उपाय है इस ब्राह्मण जीवन में निर्विघ्न रहने का, इस मार्ग में खुश रहने का, नहीं तो सेवाओं के जंगल में और विस्तार में आत्मा ऐसी भटक जाती है कि ना तो वह आत्मा याद है ना परमात्मा याद है, केवल सेवा याद है, जो सेवा कर रहे वर्कोहोलिक, केवल काम कर रहे, सेवा नहीं कर रहे, वो काम है, कर्म है वो, बस ड्यूटी, और उसमें संघर्ष है। इसके लिए ये सब तो बाहर का खिलौना है जो सेवा है, आंतरिक अभ्यास ये होता रहे यही शक्तिशाली बनाएगा। इसके लिए बार 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 सबके बीच में रहते हुए, सबके साथ इंटरेक्ट करते हुए, पब्लिक सेक्टर में काम करते हुए, ट्रैफिक के बीच में, एयरपोर्ट में, बस स्टेशन में, मार्केट में, सुपर बाजार में, झगड़े के स्थान पर लोग ग्लानी कर रहे हैं क्या करे युद्ध का मैदान ही है दिन रात, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहीं पर भी, शमशान में तो बहुत आसान है वहां तो बाल सुलभ वैराग है, न चाहते हुए भी होता है वो शरीर से वैराग, शादी में, कहीं पर भी जहां हो वहां खड़े रहकर अभ्यास करते रहना, अभ्यास धुन धुन धुन, क्या हो जाए धुन लग जाए, यही करना है। जब हमने लक्ष्य बना दिया आज मुझे 50 बार करना है रात को 8 बजे तक, तो सारा ध्यान किधर रहेगा? आज की मुरली में एम ऑब्जेक्ट याद रहता, उधर तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, यहां एम है मेरा दिन भर, आज मुझे अभी 7 बजे से चालू करना है तो रात को 7 बजे तक 50 बार ये अभ्यास करना है, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है किसी के साथ बैठ के मैं चर्चा करूं मौसम की, बारिश हुई या नहीं, भालू यहां मिला या वहां मिला, मेरे पास टाइम ही नहीं है, अगर मैं इसमें करूं तो मेरा ये रह जाएगा ना, तो नंबर तो कम हो जाएंगे तो फेल हो जाऊंगा। ओम शांति।
शुभम।